ओम शांति। स्वदेश से दूर इस निसर्गरम्य मनोहर मनहारी प्रकृति के सानिध्य में ऐसा कुमारों का संगठन, ऐसी तपस्वी आत्माओं की ये महफिल, ऐसा दिव्य अलौकिक वातावरण, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, ऐसा दिव्य अनुभव इस संगम युग पर होना बहुत बड़ा भाग्य है। सभी तपस्वी आत्माएं जो यहां एकत्रित हुई है, ऐसा संगठन संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो संगम पर जीवन में हमें वह मिल गया और हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प ले लिया। आज की जो मुरली है, अव्यक्त वाणी जो सुबह हमने सुनी और उसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर भी किए, उस मुरली को चिंतन के रूप में हम एक बार फिर देखेंगे, उसी बीच कुछ स्वमान का अभ्यास करेंगे और कुछ ड्रिल का अभ्यास करेंगे, कुछ कुमारों के जो प्रश्न है उन प्रश्नों की थोड़ी चर्चा करेंगे और कल जो ब्रह्मचर्य का विषय हम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसके और भी कुछ पहलू है उसके बारे में देखेंगे और इस ब्राह्मण जीवन में जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं वो कौन सी मर्यादा है, वो कौन सी मर्यादाएं हैं कुमारों के जीवन में, उसको हम विस्तार से देखेंगे। इससे पहले कि हम आज की मुरली का चिंतन चालू करें, कल हमने चिंतन के विषय में कुछ पॉइंट सुनाई थी, चिंतन कब करना है, चिंतन कहां करना है, चिंतन कैसे करना है और क्यों करना है। तो कल से लेकर अब तक किस किस ने यह चिंतन किया वो हाथ खड़ा करो। बस या आज सुबह से अमृत वेले से लेकर तो अब तक, क्योंकि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे हम परिपक्व नहीं हो सकते। आत्मा में शक्ति योग से आती है और ज्ञान से, केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान के मनन से। ज्ञान तो सबके पास है परंतु वो शक्ति का रूप धारण कर ले, हमारी धमनियों में रक्त के रूप में वो संचारित हो, उसके लिए मनन की आवश्यकता है। और जितना हमारा मनन श्रेष्ठ होगा, जितना हमारा चिंतन दिव्य होगा, उतनी ही हमारी इस देह से आसक्ति भी कम होती जाएगी। एक है देह के तल पर जीना, एक है चिंतन के तल पर जीना। जिनका आनंद देह में है वो देह और देह की वस्तुएं और देह की वासनाएं और देह की इच्छाएं और देह की प्राप्तियां और देह के भोग और देह के विलास उसी में ही डूबे रहते हैं। परंतु जिनका आनंद देह से ऊपर उठ चुका है, जो देह में आनंद नहीं लेते, जिनका आनंद विचारों में है, जिनका आनंद संकल्पों में है, और हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास ऐसे संकल्प है जो हमारे पास है। आज मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारा एक एक स्वमान क्या है, एक एक टाइटल डिग्री है, उन्हों के पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, तुम्हारे पास जो डिग्रियां है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। एक बार दादी प्रकाशमणि जी को राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी, डॉक्टर, तो वो जो ऐसे पहनने को मिलता है वो उन्होंने पहना और बहुत ही खुशी खुशी से और बहुत ही मासूमियत से बाबा को बताया कि बाबा हमें ये मिला है डिग्री। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा? बाबा ने कहा, बच्ची ब्रह्मा कुमारी की जो तुम्हारी डिग्री है उसके आगे संसार की सारी डिग्रियां व्यर्थ है, गौन है, जीरो है। तो बाबा ने आज प्रश्न किया है मुरली में, चिंतन किस विषय पर करना है, मैं कौन हूं। सभी प्रश्नों का ये प्रश्न है, सभी प्रश्नों की ये नींव है, यही बुनियादी प्रश्न है, मैं कौन हूं। जो दुनिया की आत्माओं को पूछते हो ये पहली कि मैं कौन हूं। अब किससे पूछना है? स्वयं से पूछना है। किसी कालखंड में एक चित्रकार था, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। वो कोई ऐसा चित्र निकालना चाहता था जो अप्रतिम हो, ऐसा एक चित्र जिसमें दिव्यता झलकती हो, ऐसा एक चित्र जिसे देखते ही मन इस संसार से ऊपर चला जाए। वो ढूंढ रहा था एक ऐसे व्यक्ति को कि जिसका वो चित्र बनाए, कि जिसे देखते ही हृदय के सारे दुख, उदासी और गम विस्मृत हो जाए। चित्रकार जो था वो युवा था, कहीं जगह घूमा, यहां गया वहां गया, बहुत घूमा, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। और एक दिन अचानक एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा चरवाहा किसी खेत में भेड़िया चरा रहा था, तो उसने देखा ये जो व्यक्ति है ये वैसा ही है जिसकी इस चित्रकार ने कल्पना की थी। उसके चेहरे पर वही सौंदर्य था, वही दिव्यता झलक रही थी, और उसे वो कहता है कि बस यही वो चित्र है, अब मुझे इसी का चित्र बनाना है। और वो उस चरवाहे का चित्र बनाता है, और वो चित्र भी ऐसा बनाता है कि वो चित्र इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि जहां तहां लोग उसे खरीदते हैं और अपने घरों में टांगते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, अब यह चित्रकार स्वयं भी बूढ़ा हो जाता है। जीवन के किसी काल में उसने सोचा था जीवन में कितनी दिव्यता है, और वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था कि जिसके जीवन से अलौकिकता झलकती हो। अब अपने ही जीवन में उसने बहुत कड़वाहट देखी, अब वृद्ध हो चला। अब मन में संकल्प आया, किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जिसे देखते ही नरक का साक्षात्कार हो, किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जिसे देखते ही नारकीय यातनाओं का अनुभव हो, किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र जो संपूर्ण कुरूप हो, किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र जिसमें कटुता हो, नफरत हो, घृणा हो, ये सारे ही भाव जिस चेहरे में परिलक्षित होते हैं। वो निकल पड़ा अपनी खोज में एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा बनाने के लिए। ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला, परंतु उसने खोज चालू रखी। उसे विश्वास हो गया था जीवन के अपने ही अनुभवों के कारण कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। और एक दिन किसी कारागार में, जेल में, उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जिसे देखते ही साक्षात घृणा का अनुभव होता था। इतना वो खूंखार और अपराधी जिसे कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु दंड की जो सजा मिली थी वो होने वाली थी। और उसने उसे कहा जेलर से कि यही वो व्यक्ति है जिसकी मुझे खोज है और मैं एक चित्रकार हूं और मुझे इसका चित्र बनाना है। और वो व्यक्ति उसका चित्र बनाने लगता है और जैसे ही चित्र बनाने लगता है वो जो अपराधी है, दुर्दांत अपराधी जिसने ऐसा कोई भी अपराध नहीं जो किया नहीं था, अचानक रोने लगता है, बहुत रोता है। प्रश्न है आपसे, वो क्यों रोता है? क्योंकि ये व्यक्ति वही था जो चरवाहा था किसी समय। चित्रकार तो भूल चुका था परंतु जिसने अपराध किए थे, एक समय था जहां संपूर्ण पवित्र था थी जीवन में, एक समय था जब वो दिव्यता से आपूरित था और जीवन में चलते 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 कहां आ गया, कहां से जीवन की यात्रा शुरू की और अब कहां पहुंच गया। और रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अपराध भाव से चित्त ग्रसित था उसका। हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर आई तो कितनी हम में दिव्यता थी, कितनी पावनता थी, और हमने कुछ कालखंड के बाद अपने ही विकर्मों से अपना ही स्वरूप इसी अपराधी की तरह बना दिया है। कितने ही पाप और कितने ही विकर्म क्यों हुए? क्योंकि यह स्मृति ही भूल चुकी थी मैं कौन हूं। और यही स्मृति बाबा ने अब आकर हमें दिलाई है। बाबा ने एक छोटा सा कार्य किया है परंतु है सबसे बड़ा। हमें यह याद दिलाया कि हम कौन है, केवल स्मृति दिलाई है। और स्मृति दिलाते ही स्मृति से ही परिवर्तन हुआ। बाबा ने आके किया क्या? बाबा तो आता है और बोलता है बस, वो कहीं भागता तो है नहीं, चिल्लाता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है जोर जोर से कि ये करो वो करो ऐसे करो। केवल अपनी दृष्टि से उसने कार्य किए हैं, अपने बोल और दृष्टि से, कभी कभी बोल से भी कम, दृष्टि से ज्यादा। परमात्मा दृष्टि, उसकी दृष्टि जिन जिन आत्माओं पर पड़ी वहां स्मृति का परिवर्तन हुआ। जो स्मृति थी कि मैं देह हूं और देह के भोग और देह के विलास ही जीवन का चरम लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही रूपांतरित हो गया। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा मानव धर्म। क्या समझते थे स्वयं को? मानव, मैं मानव हूं, मेरा मानव धर्म है। बाबा ने कहा यह देहभान का धर्म है, इसके आधार से सारे ही कर्म कैसे हो गए? उल्टे हो गए। अयथार्थ धर्म अर्थात अयथार्थ कर्म, अयथार्थ धारणा अयथार्थ कर्म, यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म, कर्म का भी आधार धर्म है। बाबा ने हमें अपने ही स्वधर्म की याद दिलाई। स्वधर्म, स्वदेश, स्वलक्षण, स्वलक्ष्य, स्वउन्नति, सारी ही बातें याद दिलाई। आज की मुरली में बाबा ने धर्म को परिभाषित किया है। धर्म अर्थात मैं कौन, धर्म अर्थात मैं क्या, धर्म अर्थात विशेष धारणा। संसार में कई सारे धर्म हैं, कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई ईसाई धर्म, हर एक धर्म जैसे कि एक कारागार है जहां पे व्यक्ति फंसा हुआ है। संसार में जितने युद्ध हुए हैं, जितने धर्म की वजह से हुए उतने और किसी वजह से नहीं हुए। आस्तिकों ने इस जगत को जितनी हानि पहुंचाई है उतनी नास्तिकों ने नहीं पहुंचाई है। द्वापर से अब तक 2500 साल में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं। 15,000 वह जो बड़े बड़े हैं जिनकी चर्चा है, ऐसे 15,000। तो धर्म के नाम पर यह भूमि रक्त रंजित हुई है पुनः पुनः। बाबा इस समय आकर नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वहां जिन्होंने धर्म की स्थापना की वो धर्मात्माएं थी, अवतार थे। यहां जिनके द्वारा धर्म की स्थापना हो रही है वह वास्तव में सच्चे सच्चे धर्मात्माएं हैं, वही सच्चे सच्चे अवतार है। तो हम सभी कौन है? धर्मात्माएं हैं, अवतार है। हमारा संसार में आविर्भाव क्रांति के लिए हुआ है। संसार में ऐसी क्रांति लानी है जो यह नरक तुल्य संसार स्वर्ग तुल्य हो जाए। इतना श्रेष्ठ कर्तव्य हमारा है। संसार में जो अवतार हुए हैं उनमें एक विशेषता रही हमेशा, वो ये कि उन्हें ये कभी नहीं भूला कि मैं अवतार हूं। क्या श्री कृष्ण को कभी ये भूलता है कि मैं अवतार हूं? किसी भी अवतार के जीवन में एक दृष्टिपात करो, जन्म उसका कहां हुआ, कहां से कहां गया? गोपियों के साथ में लीलाएं की, ब्रज भूमि में लीलाएं की, परंतु जैसे ही वहां का पाठ पूरा हुआ आगे दिखाया है गोकुल छोड़ने के बाद, उसके जीवन में कभी गोकुल का कोई वर्णन नहीं है। सुधामा कभी उससे पूछता है सांदीपानी के आश्रम में कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मुरली सुनाते थे, एक बार मुझे सुनाओ। तो क्या कहता है कि वो पाठ पूरा हो गया, अब मैं मुरली नहीं सुना सकता। क्योंकि अवतार जो होते हैं उन्हें निरंतर याद रहता है कि हम क्यों आए हैं। वो कहीं पर भी व्यक्ति में और वस्तु में, पदार्थ में और साधन में और स्थान में नहीं फंसते। कार्य पूरा हुआ आगे, कभी उनको विस्मृति नहीं होती है। अवतार की या धर्मात्मा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये विशेषता है। दूसरी ये विशेषता है कि कोई भी चीज उन्हें प्रभावित नहीं करती या खेल की तरह लेते हर चीज को। कृष्ण के जीवन में दिखाया कितने विघ्न आए, बचपन से ही विघ्न ही विघ्न विघ्न ही। कभी उसको रोता हुआ देखा, दुखी होते हुए देखा, कभी यह कहते हुए सुना कि यह कंस मुझे क्यों परेशान करते रहता है बार बार, कभी नहीं उसको संकल्प आता है। जहां अवतार जो होते हैं उनका चरित्र बहुत ऊंचा होता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम, हर चीज उनका मधुर होता है। हम सभी आत्माएं कौन है? धर्मात्माएं। हमारा कर्तव्य क्या है? आज की मुरली की शुरुआत आज बाप दादा विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। उसकी दृष्टि देखो कैसी है, कितनी बड़ी सभा बैठी है। ये मुरली चली है मेडिटेशन हॉल 81 में, वहां तो छोटी ही सभा होगी, परंतु बाबा जब मुरली चलाते थे, यहां तक कि जब बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे और ऐसी मुरली चलाते थे कि उनको लगता था, दादिया जो थी उनको लगता था पता नहीं हम लोग केवल 10-12 लोग हैं, परंतु ये मुरली ऐसी चल रही है जैसे कि हजारों लोग बैठे हुए हैं। वो नशा चलाते समय बाबा को, 3 दिन पहले मुरली में आया था डांसिंग गर्ल का उदाहरण। डांसिंग गर्ल जो होती है अगर वाह वाह किए, सभा वाह वाह करती है तो और उमंग आता है, वैसे ही बाप को भी ज्ञान डांस करने आए हैं बाप। तो कितने सालों पहले ये मुरली चली है। मुरली कभी बासी नहीं होती। क्यों होती है? मुरली उस फल की तरह है जिसमें ना गुठली गुठली है और ना ही छिलका, कुछ भी त्यज्य नहीं है। एक एक महावाक्य जो है, एक एक वाक्य जो है वो महावाक्य है बाबा का। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको छोड़ देते हैं और इसको लेते हैं? हर एक वाक्य वाक्य नहीं है, महावाक्य है। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक आत्माओं को। कितने ऊंचे समान है दोनों, विश्व परिवर्तक, विश्व की धारा को बदलने वाले, विश्व में आमूल परिवर्तन लाने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले। संसार की आत्माओं को यह भी नहीं पता कि कल्याण किसी कैसे कहते हैं। विश्व को पाठ पढ़ाने वाले, जो पृथ्वी मरणासन्न है ऐसी पृथ्वी में नवजीवन संचार करने वाले विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी आत्माएं। हमने महावाक्य सुना, परंतु जैसे ही स्वमान मुरली में आते हैं इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। जो लिख सकते हैं वो लिखे, विश्व परिवर्तक अर्थात क्या, विश्व कल्याणकारी अर्थात क्या, विश्व कल्याण करना अर्थात मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है इस जीवन में, मैं ऐसे कौन से कार्य करूं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसने बहुतों का हित हो, लोक संग्रह हो और बहुतों का कल्याण हो, ऐसा मैं इस कुमार जीवन में क्या करूं। विश्व परिवर्तन करना है, हर एक उतना ही विश्व परिवर्तन कर सकता है जितना उसने स्वयं को परिवर्तन किया है, उससे ज्यादा नहीं। विश्व परिवर्तन हमारी वजह से रुका है क्योंकि हमने स्वयं को परिवर्तन नहीं किया है। अगर हमें कहा जाए परिवर्तन करने को तो हम कहते हैं हमारी ये नेचर नहीं है, हमारा ये संस्कार नहीं है, चिंतन करना हमने सीखा नहीं है, अध्ययन करना हमें पसंद नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा फिर? लिखना हमें पसंद नहीं है। हर एक को लिखने की आदत डालनी है और हर एक को चिंतन करने की आदत डालनी है। जब तक ये कार्य नहीं होगा ज्ञान शक्ति नहीं बनेगा, केवल वो ज्ञान रह जाएगा। बस एक है ज्ञान, सुनना सुनाना बस उतना ही, कोर्स करना कराना उतना ही। जो कोर्स करा रहा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है और जो कोर्स कर रहा है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी दुर्दशा ना हो। केवल सिखाने के लिए, मुरली पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। एक एक मुरली का पॉइंट शक्ति बन जाए। मुरली पढ़ने के बाद हम वो ना रहे जो पहले थे, जीवन में परिवर्तन कुछ ना कुछ आ जाए। इसके लिए उसका विश्लेषण करना है, प्रश्न निकालने हैं उससे, जैसे आज की मुरली में प्रश्न उत्तर किए। पर क्या हम रोज की मुरली से ऐसा करते हैं? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? टाइम नहीं है। कहां जा रहा है हमारा समय? योगी बनने के लिए और ज्ञानी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है। इस कुमार जीवन में ऐसा कोई भी कर्म ना करे कि जिससे हमारा समय ज्ञान योग सेवा के अतिरिक्त अगर कहीं जा रहा हो तो सबसे पहले उसको स्टॉप करना है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो इंटरनेट हो, तीन मुख्य है, मोबाइल टीवी और इंटरनेट। कितना समय यहां जा रहा है? समय को बचाना है या फिर समय को चुराना है? क्या करना है? समय को चुराना है। जब भी समय मिले चिंतन करना है, जब भी समय मिले रूहानी ड्रिल करनी है, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, ये कार्य करने हैं। तो आज बाप दादा विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। कितना सुंदर महावाक्य है। संसार में जो भी कर्म करते हैं वो धर्म के आधार से किए जाते हैं। तो यहां पर भी बाबा ने जो कहा धर्म क्या है, तो धर्म अर्थात विशेष धारणा, धर्म अर्थात मैं कौन हूं, फिर यथार्थ कर्म और अयथार्थ कर्म की परिभाषा यहां बाबा ने दी है। किसको अयथार्थ कर्म कहेंगे? अगर देहभान की स्मृति है, मानव धर्म ये समझते हो तो उल्टे कर्म होंगे। अगर समझते हो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो कर्म ही वैसे होंगे। जैसे एक संकल्प मात्र है मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, छोटा सा संकल्प है परंतु इसमें अथाह शक्ति समाई हुई है। एक फकीर था जिसका एक छोटा सा झोपड़ा था, इतना छोटा कि बस दो ही लोग रहते थे, बूढ़ा हो गया था वह और उसकी पत्नी। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। फकीर अपनी पत्नी से कहता है शायद कोई परिचित है, कोई मित्र आया है। उसकी पत्नी कहती है दरवाजा मत खोलना, यहां जगह कहां है, क्योंकि हम दोनों के लिए ही तो जगह कम पड़ रही है। वो फकीर उसकी पत्नी से कहता है ये कोई राजा का महल नहीं है जहां जगह कम पड़ जाए, ये तो फकीर की झोपड़ी है, यहां तो बहुत जगह है, उसको आने दो। बड़े ही बेमन से वो दरवाजा खोलती है और वो व्यक्ति अंदर आता है पूरा भीगा हुआ। अब तक ये दोनों सोए रहते हैं तो अभी बैठ जाते हैं क्योंकि जगह कम है, तो तीन लोग हो गए। थोड़े समय के बाद फिर से दस्तक होती है, ठक ठक ठक। फकीर कहता है देखो शायद कोई परिचित है और आश्रय चाहता है। वो जो व्यक्ति अभी थोड़ी ही देर पहले आया था वो कहता है यहां जगह कहां है। थोड़ी देर पहले वो ये भूल गया था कि मैं भी अंदर आया था। फकीर कहता है जहां हृदय में प्रेम है वहां पर जगह है, मैंने जगह नहीं दी थी तुम्हें, तुम्हें भी प्रेम ने दी थी जगह जो कि हृदय में है, आने दो। तो उसकी पत्नी कहती है जो बाहर है वो दो लोग है, एक नहीं। वो कहता है फिर भी आने दो, अब तक तो हम बैठे हैं, वो आने के बाद हम खड़े हो जाएंगे। रात आगे बढ़ती है, थोड़ी देर के बाद और आवाज आती है। तो फकीर कहता है कि देखो कोई परिचित मित्र तो होगा। वो जो दो लोग अभी आए थे वो कहते हैं कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये तो गधा है। फकीर कहता है इसे भी आश्रय की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें जिसने आश्रय दिया था वो मैंने नहीं दिया था, परंतु हृदय में जो प्रेम था उस प्रेम ने तुम्हें आश्रय दिया था। जिस प्रेम ने तुम्हें आश्रय दिया है वो उस गधे को भी आश्रय दे सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाहर जाने के लिए राजी हूं। छोटा सा ही संकल्प है, मैं प्रेममयी आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम पूर्ण आत्मा हूं, यह धर्म है, उसी अनुसार कर्म हुए। कर्म में प्रेम झलक रहा है, कहां से आया ये प्रेम? झोपड़ी में रहता हुआ व्यक्ति परंतु हृदय कैसा बन गया? जाता त्या महाल्या मज्जाव शब्द आला, दारात नाही दोर्या या झोपड़ी तमाचा, पाहूनी सौख्य माझे देवेंद्र तो हिलाजे, शांति सदा विराजे या झोपड़ी तमाचा। हृदय प्रेम भरना है उसमें, उसमें जो जन जन का जहर भरा है उस जहर को वहां से हटाना है। तो जैसा धर्म होगा उसी अनुसार कर्म होंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ गुणों की स्वरूप आत्मा हूं। मैं कौन? बाबा ने कहा इसी प्रश्न के उत्तर में कितने सारे उत्तर आ जाएंगे। तो तुम्हारा यह टाइटल है, ये स्वमान है, अगर ये स्वमान लिखे तो छोटी सी किताब पुस्तक बन सकती है। सारे कल्प में इतने स्वमान और किसी के नहीं। और सुबह बहन जी कह रहे थे ये स्वमान ही तुम्हारी क्या है, ड्रेस है। डिग्री तो मुरली में आया ही है, डिग्री तो है ही, ड्रेस है। ये ड्रेस को बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो बार बार चेंज करते हैं, हर ओकेजन के लिए अलग अलग ड्रेस। तो स्वयं को भिन्न भिन्न स्वमान, आज की मुरली का जो होमवर्क है, रोज एक नया स्वमान लेना है। क्या करना है? रोज एक नया स्वमान लेना है। हमने जो आज अमृत वेले के बाद कुछ काम दिया था सभी को, सब लोग तो थे नहीं यहां, कुछ थे, सुबह जो स्वमान लिखे, हाईएस्ट नंबर कितना था? 35, वो थे 35। इस क्लास में हम कितने निकालेंगे? अब एक सौ पैंतीस की 1035, 1035 तो निकलने चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर फिर से आएंगे बाद में, पहले बाबा ने मुरली में जो कहा है उसको हम पूरा करेंगे। इस बात को समझाने के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। हम कितनी बार इस स्वमान को सुनाए, पर बाबा ने देखो कैसे उसके ऊपर चिंतन सुनाया है। इस एक स्वमान को बाबा ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला उदाहरण, स्वदर्शन चक्र अर्थात पर का दर्शन नहीं। पर को कैसे परिभाषित किया? पर अर्थात स्वयं की देह और दूसरों की देह। यह देह भी क्या है? प्रकृति है। जो स्वयं की देह को देखता है वह भी प्रकृति के वश है। जब स्वयं की ही देह को भूलना है तो दूसरों की देह का क्या करे, वो तो बहुत बड़ी बात है। काम विकार उत्पन्न होता है देह को देखकर। जिन्हें काम जीत बनना है उन्हें अगर देह को देखना अच्छा ही लगता है तो कल जो स्वरूप सुनाए थे तीन देह के, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका दर्शन करना है और उससे जो दुख होता है उसका चिंतन करना है, तो इस देह से स्वतः ही विराग होगा। ईश्वरे विराग, ईश्वरे अनुराग, विषये विराग, विषयों से विराग आ जाए। पर को देखना, देह को देखना, एक तो यह है देह को देखना अर्थात हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं हुए, एक दूसरा देह को देखना अर्थात वशीभूत हो जाना, तीसरा देह को देखना अर्थात विघ्न पड़ना। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है अगर तुम देह को देखते हो तो तुम्हारे पुरुषार्थ में विघ्न पड़ेंगे, केवल देखने मात्र से, अभी कुछ किया नहीं है और केवल देखा है। गीता में एक जगह लिखा है वो सभी सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, टच से, इस चमड़ी के स्पर्श से जो भी सुख उत्पन्न होंगे वो अंततोगत्वा दुख में परिणित होंगे। जो भी सुख स्पर्श से उत्पन्न होंगे, इस देह को टच करना, बाबा ने कहा है ये देह विष है। यहां टच की और 169 की मुरली है जिसमें बाबा ने महा, महा और महापाप की परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा? महा, महा और महापाप की। अगर संकल्प से और नजर से देह को स्पर्श किया, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, किससे? संकल्प से और नजर से इस देह को स्पर्श किया तो वो भी महा, महा, महापाप है। हम क्या देख रहे हैं इन आंखों से? न्यूज देख रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। केवल कोई कहते हम तो टीवी नहीं देखते, परंतु क्या देखते हैं? न्यूज देखते हैं, उसमें पर एडवर्टाइजमेंट आती है। वृत्ति चंचल होती है, इन आंखों की क्या करनी है? संभाल करनी है। सबसे ज्यादा विकर्म कौन करता है? धोखे देने वाली आंख। पापाची वासना नको दाऊ दोड़ा त्याहुना आंधळाच बरामी। तुकाराम गाथा में लिखा है, पापाची वासना नको दाऊ दोड़ा त्याहुनी आंधळाच बरामी। आंख क्या देख रही है? केवल मणि को देखो, मणि को देखने की साधना करनी है, क्योंकि देह पर है। पर में बहुत दुख समाया हुआ है। अगर पर से आनंद आता है, वो आनंद अल्पकाल का है, वो आनंद तुरंत ही दुख में परिणित होगा। ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद है शास्त्रों में, ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद बताए हैं। सबसे पहला देखना, देह को देखना। दूसरा स्पर्श करना। अगर इन 8 में से एक भी हो रहा है तो वह ब्रह्मचर्य का वहां खंडन हो रहा है, उसे अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा। सबसे पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना, तीसरा केली। संस्कृत शब्द है केली, अर्थात खेलना। ये सन्यासियों के नियम है जो शास्त्रों में बताए हैं, या फिर उन सन्यासिनियों के लिए भी है जो शास्त्र में वर्णित है। खेलना एक दूसरे से के साथ, किसी भी तरह का खेल, बैडमिंटन, टेनिस, चेस या और कुछ, ये भी विच्छेद कहा गया है। देखना, स्पर्श करना, तीसरा खेलना, चौथा प्रशंसा करना। प्रशंसा अर्थात मन ही मन में किसी विशेष व्यक्ति की प्रशंसा करना, उस पर मोहित होना, या अपने मित्रों के बीच उस स्त्री या उस पुरुष की आवश्यकता से अधिक महिमा करना। दादी जानकी अपना एक अनुभव सुनाती है। दादी कहती है कि एक बार किसी भाई का कोर्स कराया, दादी कह रही है, बहुत पहले की बात है जो दादी ने ही क्लास में एक दो बार सुनाई है। किसी भाई का कोर्स कराया, भाई बहुत अच्छा था, बहुत उसको ज्ञान समझ में आ गया, उमंग उत्साह बहुत था। ब्रह्मा बाबा को जाकर दादी ने सुनाया कि बाबा ये भाई बहुत अच्छा है, इसको जिसको हमने कोर्स किया उसको तो एकदम तीर लग गया, ये बहुत ही धारणा युक्त भाई है, बहुत ही मीठा है। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? प्रशंसा, देखना, स्पर्श करना, खेलना, प्रशंसा करना। दूसरे अर्थों में देखा जाए, यहां किसी भी व्यक्ति की महिमा नहीं है। किसी में चाहे कितने ही गुण हो, कोई बोलता अच्छा है, कोई गाता अच्छा है, कोई सेवा अच्छी करता है, किसी में कोई एक कला में पारंगत है, महिमा किसकी है? पर गुण किसने भरे उसमें? वो क्या था? कहां पड़े थे हम? किस देश में पड़े थे? किस छोटे से गांव से उसने उठाया है? बाइबल में एक महावाक्य है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू, आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों को कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आई हैव पिक्ड यू अप, मैंने तुमको उठाया है इस संसार से एक एक करके। किसने किसको चुना है? हमने उसको चुना या बाबा ने हमको चुना? क्या हम में वो दिव्यता थी? उसने चुना, उसने देखा, उसने परखा, रत्न पारखी। हम नहीं, वो है। कहां कहां से किसको किसको चुना है उसने? कोई कोई तो एक एक गांव से केवल एक एक ही है। ऐसा गांव जहां कोई वाहन भी नहीं जाता, वहां से उसने, वहां उसकी दृष्टि पड़ी और उसको लगा कि ये वो आत्मा है जिसके द्वारा मुझे सेवा करानी है। अगर वही आत्मा इस अहंकार में आ जाए कि देखो मैं कितनी सेवाएं कर रहा हूं, देखो मेरे द्वारा क्या क्या हो रहा है। सूरज भाई हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक बहन जिसने सारी उम्र सेवा की, काल्पनिक उदाहरण, सारी उम्र सेवा की, हजारों सेंटर खोले, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कोर्स कराया, देह को छोड़ती है और बाबा के पास पहुंचती है। बाबा उससे पूछते हैं, बाबा स्वयं पूछ रहे हैं, वो खुद नहीं बता रही है, बाबा उससे पूछ रहे, बच्ची बताओ तुमने क्या क्या सेवाएं की। वो कहती है, बाबा मैंने इस तरह अपने जीवन को समर्पित किया, इतने इतने लोगों का कोर्स कराया, इतने इतने सेंटर खोले, इतने इतनी जगह जा जाकर भाषण दिए, इतने इधर देश और विदेश में यात्राएं की। खुद बता रही है, क्योंकि बाबा ने पूछा इसलिए बता रही है। सारा पूरा हुआ, फिर बाबा कहते हैं, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? संगम युग पर सारे ही कार्य कौन कर रहा है? यदि हम सोचे कि ये सेवाएं मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं रहूं तो ये सेवाएं होगी ही नहीं। तुम कौन हो कुछ करने वाले? क्या वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं? कल एक आज ही समान सुबह किसी ने कहा ना, कठपुतली है। किसने कहा था? हम सब कौन है? कठपुतलियां है। कौन चला रहा है? अगर उसको हटा दिया जाए इस जीवन से तो क्या हम ऐसे बैठ सकते हैं यहां पर? या फिर एक दूसरा प्रलोभन मैं आपको दे रहा हूं, यदि आपको कहा जाए बाबा को याद नहीं करो फिर भी श्रेष्ठ पद मिलेगा, कौन कौन तैयार है? खड़े हाथ खड़ा करो। बहनों की तरफ से, बाबा को याद किए बिना ही आपको स्वर्ग में श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा, या बिना उसको प्यार किए, बिना उसकी श्रीमत पर चले, ऐसी एक नई ऑफर लेटेस्ट। कौन कौन है जो तैयार है? तो हमारा जो जीवन है उसका दिया हुआ है। हम क्यों ये समझ रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूं? हम जो बोल भी रहे हैं, किसकी शक्ति है ये? शक्ति कहीं और से आ रही है। सुदेश दीदी हमेशा उदाहरण देते, हम सब कौन है? नल। नल पता है ना, नल टंकी ऊपर है, नीचे बकेट है। नल को अभिमान आ जाए, देखो मेरा कितना अच्छा जल है, अरे वो केवल क्या है? निमित्त है, उसमें से वो आ रहा है पानी। बहुत सारे पानी थे, कहीं से भी आ सकता था, तुमको चुना गया है। बाबा को अगर देखा जाए तो किसी भी ब्राह्मण आत्मा की जरूरत नहीं है इस संसार का परिवर्तन करने के लिए। वो सर्वशक्तिवान है, कुछ भी कर सकता है, इतनी उसमें शक्ति है। वो तो हमारा भाग्य बनाने के लिए हमको ये दे रहा है, और उस पे अगर हम सोचे कि मैं ये हूं, मैं याऊ हूं, मैं त्याऊ हूं, तो हो कौन तुम? विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है, विदेश की दो बार यात्रा कर चुके हैं। 1896 की बात, 98 की बात, चार साल के बाद उनकी मृत्यु है। दो चार ही साल बाकी है जीवन के अंत के, 1898 दो बार विदेश जाके आए, और अब लगा कि बहुत प्रचार, वाणी से बहुत सेवा की, अभी थोड़ी तीर्थ यात्रा करना है। और अकेले निकल पड़ते और अपने सारे साथी जो सन्यासी होते हैं उनको कहते हैं कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। अमरनाथ जाते हैं और अमरनाथ में बहुत कठोर तपस्या करते हैं, और फिर आते आते नीचे आते एक जगह जिसको कहते हैं खीर माता का मंदिर। किसी ने देखा है? कश्मीर में है खीर माता। तो वो माता के मंदिर में सोचते अभी 7 दिन यही रहूंगा, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक उस मंदिर में वो रहते हैं 1898। 7 दिन तक उस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, देखते हैं कि वो मंदिर जो है वो टूटा हुआ है। प्रश्न पूछते हैं किसने तोड़ा ये मंदिर, उत्तर आता है मुसलमानों ने तोड़ा। क्रोध से भर जाता है मुसलमान, ये गांव के लोग इतने नपुंसक है कि मंदिर को भी नहीं बचा पाए, बहुत क्रोध आ जाता है। अगर मैं होता तो बिल्कुल तोड़ने नहीं देता, मैं होता तो जीवन अपना यही समर्पित कर देता, लड़ते लड़ते मर जाता, परंतु किसी को तोड़ने नहीं देता। फिर ध्यान में बैठता है, मूर्ति से आवाज आती है, तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं? डू यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू? क्या आवाज आती है, तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं? क्या मैं इतनी असमर्थ हूं कि मेरे मंदिर को भी नहीं बचा पाऊं? तो थोड़ा शांत तो होता है उसका मन। दूसरे दिन फिर सोचता है, ठीक है मुसलमानों ने तोड़ा, मैं उन्हें माफ करता हूं। अमेरिका में मेरे बहुत से मित्र हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करूंगा, गांव गांव जाकर भीख मांगूंगा और फिर से मंदिर का नवनिर्माण करूंगा। फिर से आवाज आती है, मूर्ति से आवाज आती है, अगर मैं चाहूं तो क्या स्वयं का स्वर्ण मंदिर नहीं बना सकती यहां पर? मैं चाहूं तो 7 मंजिल मंदिर अभी यहां तैयार कर दूं, तुम कौन हो ये सब करने वाले? और बस दिखाया है, उसके बाद में उसे सभी बातों से जैसे वैराग आ जाता है। ये सेवाओं का विस्तार, ये भाषण, इधर जाओ मठ बनाओ, ये करूं वो करूं, इधर जाओ इससे मिलूं, जो अंतिम 4 वर्ष है अंतर्मुखी, ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंतिम 6 मास 69 के संपूर्ण सेवाओं में भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो अव्यक्त स्थिति। तो हम बात कर रहे थे कौन चला रहा है हमें, उसके भी पहले हम बात कर रहे थे 8 विच्छेद, उसमें 4 हो गए थे, 5वां गुह्य भाष्य अर्थात सीक्रेट टॉकिंग अर्थात चैटिंग, मॉडर्न शब्द, ये तो संस्कृत के शब्द है गुह्य भाष्य, मॉडर्न की हमारी भाषा में चैटिंग और गॉसिपिंग। और गॉसिपिंग थोड़ा अलग प्रकार का है, हम चर्चा कर रहे हैं काम विकार की, वो व्यर्थ में आएगा, यह विकार की बात चल रही है, स्त्री और पुरुष के बीच की बात चल रही है यहां, स्त्री देह और पुरुष देह इसकी बात यहां चल रही है। टॉकिंग, तो गुह्य भाष्य अर्थात सीक्रेट टॉक्स, हमारी जो भी टॉकिंग में क्या क्या आ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाते हैं, जैसे कि SMS, व्हाट्सएप, जैसे कि ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब कुछ आ जाता है उसमें, इंस्टाग्राम, बहुत सारे आ जाते हैं उसमें। गुह्य भाष्य करना ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। अगर कोई कर रहा है आज से, संकल्प से स्टॉप करना है उसको, क्या करना है, स्टॉप करना है। इस भट्टी का ये एक बात यहां से अगर कोई ले जाए तो जीवन निर्विघ्न होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है। 6वां संकल्प, 6वां संकल्प, कामुक संकल्प, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल फीलिंग्स, सेक्सुअल इमोशंस, सेक्सुअल अट्रैक्शन, कामुक भावनाएं, कामुक कल्पनाएं, कामुक आकर्षण, संकल्प करना, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, बचे यही सारे संकल्प। क्योंकि देह जो है इसमें हार्मोन्स है, उधम मचाते हैं, अजीब सी हलचल उत्पन्न करते हैं, भागता है शरीर में जो रस है वो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। संकल्प और शक्ति का बाहर जाना साथ साथ, संकल्प आया और शक्ति बाहर तुरंत, और किसी चीज से नहीं जा सकती वो। संकल्प शक्ति का विसर्जन, शक्ति का निकास। यह जो शक्ति है इसको ओज और तेज में परिणित करनी है। यह होगी तभी जब संकल्प वश में होंगे। संसार के लोगों ने देह को वश में करने का प्रयत्न किया परंतु असफल रहे, क्योंकि और संकल्प वश में कैसे होंगे, उनको अगर श्रेष्ठ दिशा दी गई तभी संकल्प वश में होंगे। अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है तो जो बचा है वो व्यर्थ है, साधारण है, और जहां व्यर्थ है और साधारण है वहां कामुक चेष्टाएं और कामुक भावनाएं आने को ज्यादा समय नहीं लगता। यदि यह शक्ति का संवर्धन किया जाए तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है। अगर इस शक्ति का संवर्धन किया जाए तो वह शक्ति जो काम से नीचे जा रही है वो ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, ऊपर जाकर एक शक्ति का रूप धारण करती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तेजस्वी होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी मेधावी बुद्धि होती है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में चला जाए वहां वो स्वतः ही सफल होता है। केवल दिशा परिणित होती है, कहीं पर भी चला जाए, संगीत में चला जाए तो संगीत में आके निकल जाएगा। संसार में जो भी महान आत्माएं हुए हैं अगर देखा जाए, उसमें से जो जो इस अलग अलग दिशाओं में गए हैं, कम से कम वह कार्य करते समय वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में थे। जितनी भी श्रेष्ठ आविष्कार हुए हैं वो सभी ब्रह्मचर्य की अवस्था में हुए। जितनी कविताएं श्रेष्ठतम लिखी गई है, जितनी रचनाएं हुई है, कोई मूर्ति बनाई गई है, कोई पेंटिंग मूर्ति या कुछ भी इस तरह का रचनात्मक, तो ये जो ऊर्जा जो नीचे बह रही है अब ऊपर उठती है और यहां पर ओज में परिणित होती है। ऐसी व्यक्ति की वाणी जो होगी वो साधारण वाणी नहीं होगी, उस वाणी में तेज होगा। वो वाणी जो होगी वो हृदय को स्पर्श करने वाली होगी। वो वाणी जो होगी उसमें प्यूरिटी के वाइब्रेशंस होंगे। इसके लिए ब्रह्मचर्य की महिमा अगाध है। छठवां सातवां था संकल्प, कितवा छठवां सातवां अध्यावसाय, अध्यवसाय निकट जाना, स्त्री का पुरुष के, पुरुष के स्त्री का निकट जाने का प्रयत्न करना, यह बहुत आगे की स्टेज है। सातवां क्या है? अध्यवसाय अर्थात निकट जाने का संकल्प करना। एक सन्यासी था, उपनिषदों में कथा है, तपस्या करता था वन में, एकांत में बहुत ज्यादा तपस्या करता था। और तो जब भी कोई संसार में तपस्या करता है तो शास्त्रों की कहानी में हिलने लगता है उधर कौन, और बड़ा दुखी होता है कौन, एक ही व्यक्ति है इंद्र, तो हमेशा कुछ कुछ होता है उसे। तो दिखाया है उसी वन में एक बहुत ही कुरूप स्त्री रहती है, बहुत ही कुरूप। वो वन में जाती है, कुछ सामान इकट्ठा करती है और वहां से चली जाती है। इंद्र उसकी बुद्धि को थोड़ा परिवर्तन करता है। वो जिस जल से पानी भरती है, एक दिन वो जल जैसे ही पीती है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वो अति सुंदर बन जाती है। और ये जो युवती है सोचती है, ये जो सन्यासी है बेचारा अकेला रहता है और अकेला तपस्या करता है, क्यों ना उसकी सेवा करूं। परंतु उसमें श्रेष्ठतम भाव होते हैं उसके, उसकी सब ध्यान, उसका ध्यान रखना, उसके लिए जल लाके देना, फल लाके देना, या और कुछ इस तरह की उसकी सेवा करती है। वो सन्यासी कभी उसकी तरफ नहीं देखता है, वो तो अपनी साधना में मगन रहता है। और इतनी साधना उसकी तीव्रता पर होती जाती है कि वो जो जल लाके रखती है वो दो दो तीन तीन दिन ऐसा ही रहता है, जो फल लाके रखती है वो भी दो दो तीन तीन दिन ऐसा ही पड़ा रहता है। इतनी उसकी साधना ज्यादा हो जाती है। एक दिन वो आंख खोलता है और उसको देखता है और उसको कहता है कि देवी तुम यहां क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं आपकी सेवा में हूं, और वो आंख बंद कर लेता है फिर से अपनी तपस्या में मगन। ये जो स्त्री है उसे लगता है कि मैंने उसके सामने जाकर शायद इस तपस्वी की तपस्या भंग कर दी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। परंतु दूसरी ओर उसे खुशी भी होती है कि उसने मुझे देखा तो सही, अंदर से थोड़ी आसक्ति भी तो थी कि ये मुझे एक बार तो देखे। एक तरफ पश्चाताप भी था क्योंकि वह भी ज्ञानी थी, वह भी ब्रह्मज्ञानी थी। एक तरफ दुख भी था, तो वह सोचती अब मैं यहां नहीं रहूंगी, और वह वहां से निकल जाती है, गांव छोड़कर ही चली जाती है, वापस कभी नहीं आती है। सन्यासी अपनी सन्यास साधना करते रहता है, तपस्या जारी, और इतनी ज्यादा सन्यास वो तपस्या करता है कि इंद्र एक दिन स्वयं नीचे आ जाता है और उसके चरणों में गिर जाता है कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, अब मैं तो पराजित हो गया हूं, किस चीज की तुम्हें कामना है, मैं तुम्हें अपना स्वर्ग देने के लिए तैयार हूं, स्वर्ग को तुम ले लो। वो कहता है मुझे अब स्वर्ग की भी कोई कामना नहीं। उसको लगता है ये तो इसके भी ऊपर बहुत ऊंची स्टेज पर चला गया है। फिर पूछता है तुझे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए तो मैं तुझे मोक्ष भी दिला सकता हूं। वो कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इंद्र आश्चर्यचकित होता है, अब इससे ऊपर और कौन सी चीज हो सकती है। वो कहता है मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूं। इतनी ऐसी घनघोर तपस्या और साधना। सन्यासी कहता है वह स्त्री कहां है, और कथा यहां पूर्ण होती है। अध्यावसाय, समीप जाने का प्रयत्न करना। युधिष्ठिर, महाभारत में युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक बताया गया है। युधिष्ठिर को प्रश्न पूछते हैं कि जब तुम्हारी मां कुंती तुम्हारे साथ बैठी है तो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है मां? महाभारत में उत्तर है आई एम नॉट श्योर। क्या उत्तर है? आई एम नॉट श्योर, इतना वेग है। आठवां अनुच्छेद है वास्तविक क्रिया, एक्चुअल एक्ट। आठ अनुच्छेद, इनमें से एक भी यदि हो रहा है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है।